greet each and every one of you seated before your televisions waiting for this program of the second coming of the Lord.
हम आप सभी दर्शकों का जो टेलीविजन के सामने इस प्रोग्राम का इंतजार कर रहे हैं आपका स्वागत करते हैं. ये प्रोग्राम तो प्रभु यीशु के दूसरे आगमन के बारे में है.
We are so happy you could join us and encourage us that this program has been taken much trouble to write it out and make it easier for you to understand the second coming.
और हम बहुत ही खुश हैं कि आप हमारे साथ में जुड़े हैं. हमने इस प्रोग्राम को बनाने के लिए बहुत सी मेहनत की है ताकि हम बहुत ही आसानी से और सरल शब्दों में इन सारी बातों को आपको समझा सके.
We want to say a big thank you to all our technicians who work so hard to prepare this program and get the backdrops and all these things visuals ready for you.
और हम हमारे सारे technicians का बहुत-बहुत धन्यवाद करते हैं जो बड़ी मेहनत करते हैं कि इन प्रोग्राम के साथ-साथ में सारे backdrops को लगाएं और सारी बातों को आपके लिए पूरी तरह से तैयार करें.
Behind me you will see the backdrop of the beautiful Mount of Olives.
आप मेरे पीछे यहां पर सुंदर पहाड़ देख रहे हैं, जैतून का पहाड़.
And that is where the expectation of the second coming begins.
और अपेक्षा की जाती है कि यहीं पर प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन होगा.
So we see last week I explained to you the country of Israel was born in 1948.
और आपको याद होगा कि पिछले हफ्ते मैंने आपको बताया कि 1948 में इसराइल नाम का देश फिर से जन्मा.
For around 2600 years there is no country called Israel.
लगभग 2600 साल तक इसराइल नाम का कोई भी देश नहीं था.
Even during the time of Jesus Christ.
यहां तक कि यीशु मसीह के समय में भी.
This place is called Palestine.
इस जगह को पैलेस्टाइन कहा जाता था.
If we read the book of Genesis chapter 12 verses 2 and 3.
अगर हम उत्पत्ति अध्याय 12 वचन 2 और 3 को पढ़ते हैं तो हम ये पाएंगे.
God promised to Abraham.
परमेश्वर ने अब्राहम से प्रतिज्ञा की थी.
I will make you a great nation.
मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा.
I will bless you and make your name great.
मैं तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा.
And you will surely be a blessing.
और तू निश्चय ही आशीष का मूल होगा.
Let me now take you back to the Old Testament.
अब चलिए मैं यहाँ पर आपको पुराने नियम में लेकर चलती हूँ.
Every country's name has some background.
यहाँ पर देखिए, हर एक देश के नाम के पीछे कुछ न कुछ पृष्ठभूमि तो जरूर होती है.
The same way the country of Israel has a background.
और इसी तरह से इसराइल देश के पीछे निश्चय ही एक पृष्ठभूमि है.
When Jacob was coming back from his father-in-law Laban.
और जब याकूब जो है अपने ससुर लाबान के घर से निकल रहा था.
With all his children and the cattle.
अपने सारे बच्चों के साथ में और अपने सारे पशुओं के साथ में निकल रहा था.
In Genesis, in the book of Genesis, chapter 35, verse 10.
उत्पत्ति अध्याय 35 वचन 10 में हम यहाँ पर देख सकते हैं.
At Bethel, his name was changed from Jacob. To Israel.
कि बेथेल में उसका नाम वहाँ पर याकूब से इसराइल इस तरह से बदल दिया गया.
It was changed by God, of course.
और स्वयं परमेश्वर ने उसका नाम यहाँ पर बदला था.
Since he fought with God and won.
और जबकि वो परमेश्वर के साथ में यहाँ पर कुश्ती करता है और जीतता है.
Then on the generation of Jacob.
यानी फिर याकूब का जो उसके बाद उसका वंश आया.
Was called the Israelite.
उसे इसराइली लोग कहा गया.
Then the people of Israel moved to Egypt.
और फिर इसराइली जो लोग थे वो तो मिस्र में चले गए.
And after some years the people of Israel were made as slaves.
और फिर कुछ साल के बाद में इसराइली लोगों को वहां पर मिस्र में गुलाम बना दिया गया.
Then God chose Moses to bring them back from Egypt.
और फिर परमेश्वर ने मूसा का चुनाव किया कि वो इन इसराइली लोगों को मिस्र में से बाहर निकाले.
Moses led them in the wilderness.
और मूसा उनकी अगुवाई करता है और उन्हें जंगल में लेकर चलता है.
And after Moses, Joshua became the leader of Israel.
और मूसा के बाद में यहोशू जो था वो इसराइलियों के ऊपर में अगवा हो जाता है, वो उनकी अगुवाई करने लग जाता है.
Joshua had divided the promised land to 12 tribes of Israel.
और यहोशू ने प्रतिज्ञा के देश को इसराइलियों के 12 गोत्र में पूरी तरह से बांट दिया था.
I'm sure when you're reading your Bible, you'll find this very clear now in your minds.
और मैं निश्चित जानती हूँ कि जब आप अपनी बाइबल पढ़ेंगे तो अपने मन में इन बातों को बहुत ही स्पष्ट रूप से आप जान लेंगे.
After Joshua divided the promised land to 12 tribes of Israel,
और जब यहोशू ने इसराइल के उस प्रतिज्ञा के देश को इसराइल की 12 गोत्रों में बांटा,
Israel was controlled by the judges.
उस समय इसराइल के ऊपर में न्यायी लोग राज्य किया करते थे.
The prophet Samuel was the last judge.
और उसमें भविष्यवक्ता शमूएल जो है वो तो अंतिम न्यायी था.
Nearly 410 years Israel was under the control of judges.
और लगभग 410 साल तक इसराइल जो है वो तो इन न्यायियों के अधिकार में रहा, उनके राज्य में रहा.
When the people of Israel asked for the king,
और जब इसराइली लोगों ने परमेश्वर से राजा मांगा, उसके बाद
God appointed Saul as the first king.
परमेश्वर ने शाऊल को पहले राजा के रूप में नियुक्त किया.
Then it was given to David.
और फिर उसके बाद में ये दाऊद को दिया गया.
And his descendants.
और दाऊद के साथ साथ उसके वंशों को ये दिया गया.
But after Solomon, the kingdom was divided into two.
लेकिन सुलेमान के राज्य के बाद में इसराइल राज्य दो भागों में विभाजित हो गया.
नंबर वन,
नंबर एक राज्य,
नॉर्थ किंगडम इसराइल,
जिसे उत्तरी राज्य यानी इसराइल कहते हैं,
एंड साउथ किंगडम जूदा,
और फिर दक्षिणी राज्य जिसे यहूदा कहते हैं.
इसराइल वॉज नाउ रूल्ड बाय 19 किंग्स.
अब इसराइल के ऊपर में 19 राजाओं ने राज्य किया.
एंड जूदा वॉज रूल्ड बाय 20 किंग्स.
और यहूदा के ऊपर में 20 राजाओं ने राज्य किया.
But because of the sinful nature of the people of Israel,
और इस्राएली लोगों के पाप में स्वभाव के कारण ही,
God has given them into the enemy king of Babylon.
परमेश्वर ने उन्हें उनके शत्रु राजा बेबीलोन के वश में कर दिया.
In the year 597,
यानी ईस्वी सन पूर्व 597 में,
Nebuchadnezzar,
राजा नबुकदनेस्सर,
destroyed the country and taken them as captives to Babylon.
उसने उस पूरे देश को नाश कर दिया और वो इन सभी लोगों को अपने साथ बेबीलोन में बंधवाई में ले जाता है.
After 70 years as per prophecy.
और भविष्यवाणी के अनुसार बिल्कुल 70 साल के बाद में
Again the Israelites came back to Israel.
इसराइली जो लोग थे वो वापस अपने देश इसराइल में लौट कर आते हैं.
This was their home and they lived over there.
और यही तो उनका घर था और वो वहीं पर रहने लग गए.
Then in the year 70 AD,
और फिर उसके बाद में ईस्वी सन 70 में हम इस बात को जानते हैं,
the land of Israel was completely ruined by Romans.
कि जो इसराइल देश था उसे रोमी लोगों ने पूरी तरह से नाश कर दिया, उसे बर्बाद कर दिया.
Was General Titus and scattered all the people throughout the world.
जनरल टाइटस ने उस पूरे नगर को जीत लिया, उसे पूरी तरह से तहस नहस कर दिया और जो इसराइली लोग थे वो पूरे संसार में तितर बितर हो गए.
Thus the country Israel was completely removed from the world map.
और इस तरह से इसराइल नाम का जो देश था वो संसार के नक्शे से मिट गया था.
Then as I explained to you last week, only in the year 1948.
और फिर जैसे मैंने आपको पिछले हफ्ते बताया था कि सन 1948 में
Again, in 1948, the country of Israel was reborn.
यहाँ पर हम देखते हैं कि सन 1948 में इसराइल नाम का देश फिर से जन्म लेता है.
God has promised and given this land freely to Abraham 3,000 years back.
परमेश्वर ने 3,000 साल पहले ही इस जमीन को अब्राहम को देने के बारे में प्रतिज्ञा की थी, उससे उसने वादा किया था.
When Abraham possessed the land, It is the land flowing with milk and honey.
और जब अब्राहम ने उस देश को लिया था तो वो तो देश निश्चय ही दूध और मधु की धाराओं का बहने वाला देश था.
The meaning is it was very fertile.
इसका मतलब यही है कि ये देश तो बहुत ही उपजाऊ था.
Moses before reaching the promised land has sent 12 people to spy out the land.
और मूसा ने इस प्रतिज्ञा के देश में आने के पहले इस देश का भेद लेने के लिए अपने पास के 12 भेदियों को भेजा था.
Among the 12, only 2 given the positive reply about the fertile nature of the land.
और इन 12 लोगों में से केवल 2 लोगों ने ही इस देश के उपजाऊ होने के बारे में मूसा को बिल्कुल सही खबर दी थी.
If you turn to your Bibles in the book of Numbers, chapter 13:27.
अगर आप अपनी बाइबल में गिनती की किताब अध्याय 13 वचन 27 देखेंगे तो ये पाएंगे.
It truly flows with milk and honey.
उन्होंने कहा कि सच में यहाँ पर दूध और मधु की धाराएं बहती हैं.
When the people of Israel forget their God,
और जब इसराइली लोग अपने परमेश्वर को भूल गए,
and they worshipped other gods,
और उन्होंने दूसरे देवताओं की उपासना की,
God made the kings of other nations to war with Israel.
तो परमेश्वर ने दूसरे देश के राजाओं को इसराइल के विरुद्ध में युद्ध करने लगाया.
Whenever there is a war, the first thing they used to do was to cut the trees.
और जब भी वहाँ पर युद्ध होता था, तो सबसे पहले वो पेड़ को काट दिया करते थे, उसे काट दिया करते थे.
This is very interesting to note, I must say.
और मैं यही कहूँगी कि ये जानना बहुत ही दिलचस्प ऐसी बात है.
When the trees were cut, the rainfall deteriorated in the land.
और जब वहाँ पर पेड़ काट दिए जाते थे, तो उस देश में जो बारिश हुआ करती थी, वो बारिश घट जाती थी. यानी वहाँ पर कम बारिश होती थी.
And it had become the dry ground.
और फिर वो पूरी तरह से सूखी भूमि हो जाता था.
The land of milk and honey was finally become a dry, barren land.
और ये जो दूध और मधु की धाराओं का जो देश था, अंत में वो पूरी तरह से सूखा और बांझ ऐसा देश हो गया.
After the First World War,
और पहले विश्व युद्ध के बाद में,
the people of Israel were given the permission to come and settle in their own land.
इस्राएली लोगों को अनुमति दी गई कि वो तो खुद अपने देश में जाकर वहाँ पर उस जगह पर स्थापित हो सकते हैं, रह सकते हैं.
Well, of course, you know by then the British government was in rule.
और आप जानते हैं कि उस समय ब्रिटिश वहाँ पर राज्य किया करते थे.
They have to purchase the land from the Arabs living in Palestine.
और उस समय पैलेस्टीन में रहने वाले अरब से उन्हें इस जमीन को खरीदना था, उन्हें उस बदले में उन्हें दाम चुकाना था.
As the prophet Jeremiah prophesied,
और जैसे यिर्मयाह भविष्यवक्ता ने पहले ही भविष्यवाणी की थी,
the prophecy of Jeremiah 32:44 says,
यिर्मयाह अध्याय 32 वचन 44 की जो भविष्यवाणी है ये कहती है,
men shall buy fields for money,
मनुष्य जो है वो तो पैसा देकर खेत खरीदेंगे,
and subscribe evidences,
और उसके बारे में वो सबूत लेते चले जाएंगे,
and seal them,
और उस पर मोहर लगाएंगे,
and take witnesses in the land of Benjamin.
और बेंजामिन के प्रांत में वो उसके बारे में गवाह रखेंगे.
And the places about Jerusalem.
और यरूशलेम के आसपास की जगह के बारे में वो ये सब कुछ करते जाएंगे.
The Israelites have to register the land from the local people.
और इसराइली लोगों को वहाँ पर जो स्थानिक लोग थे, उनके सामने इस देश का या इस जमीन का पंजीकरण करना था.
As the fulfillment of Jeremiah's prophecy.
और ये तो यिर्मयाह की जो भविष्यवाणी थी, उस भविष्यवाणी का पूरा होना था.
Historians say the registration of land with agreement paper and witness at first started from here.
और देखिए, इतिहासकार इस तरह से कहते हैं कि जिस तरह से जमीन की जो लेन देन है या उसके बारे में जो पेपर्स बनाने हैं, वो सब कुछ यहीं से शुरू होता है.
After the Second World War.
और फिर दूसरे विश्व युद्ध के बाद में,
the new country was born, which was called Israel.
एक नया देश जन्म लिया और उस देश का नाम तो इसराइल था.
And people from all over the world reached Israel.
और पूरे संसार से जो लोग हैं, वो तो इस तरह से इसराइल में आने लग गए.
By airplanes.
हवाई जहाज के माध्यम से.
As per prophecy of Isaiah 68.
और जैसे कि यशया अध्याय 60 वचन 8 में जो भविष्यवाणी है, उसी के अनुसार.
I'm sure this prophecy will become more meaningful for you to read now.
और मैं निश्चित जानती हूँ कि अगर आप इस भविष्यवाणी को पढ़ते हैं, तो ये आपके लिए बहुत ही अर्थपूर्ण होगी.
Who are these that fly as a cloud?
ये कौन है जो बादल के समान आते हैं?
And as the doves to the windows.
अपने दरबों की ओर उड़ते हुए कबूतरों के समान चले आते हैं.
Then on because of their hard work and God's wisdom, they developed agriculture.
और फिर उसके बाद में उनकी कड़ी मेहनत और परमेश्वर की बुद्धि के द्वारा उन्होंने खेती किसानी शुरू की.
Not only agriculture, inclusive medicines and industries.
केवल वहाँ पर खेती किसानी ही नहीं, पर दवाइयाँ और इंडस्ट्री में भी बहुत उन्नति की है.
And they became so advanced in technology.
और वो तो टेक्नोलॉजी में बहुत ही आगे बढ़ गए हैं, उन्होंने टेक्नोलॉजी में बहुत उन्नति पाई है.
Other countries were willing to collaborate with them for the development.
और उन्होंने जिस तरह से उन्नति की है, उसके कारण दूसरे देश उनके साथ में मिलकर काम करने के लिए तैयार हैं.
Especially in the agricultural drip irrigation.
खास करके खेती किसानी के लिए जो उन्होंने ड्रिप इरीगेशन बनाया है, उसके लिए
is invented by them to use the local water resources to produce the crops.
और ये तो इसराइल ने आविष्कार किया कि कम से कम पानी का उपयोग करते हुए ज्यादा से ज्यादा फसल का उत्पादन कर सके.
Also, they learn the art of harvesting.
और साथ साथ में उन्होंने फसल की कटनी करने की कला भी सीख ली.
In big quantities.
और बहुत ही बड़ी तादाद में फसल की कटनी करते हैं.
And quality products.
और साथ साथ में उनके जो उत्पादन है वो बहुत ही उत्तम दर्जे के होते हैं.
With minimum water.
और उसमें बहुत ही कम पानी की लागत होती है, इससे बहुत बड़ा उत्पादन मिलता है.
Many countries, including India, are using the drip irrigation technology.
बहुत से ऐसे देश हैं और जिसमें भारत भी है, ये तो ड्रिप इरिगेशन टेक्नोलॉजी का उपयोग करते जा रहा है.
They are the leading exporters of fruits, vegetables and flowers.
और इसराइल अभी इस समय फल, सब्जी और फूलों का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करने में सबसे ऊंचाई पर ऐसा देश है जो कि सबसे ऊंचाई पर है.
Many scientists and research scholars are from Israel.
बहुत से वैज्ञानिक और रिसर्च करने वाले जो विद्वान हैं वो तो इसराइल देश के ही हैं.
And they invented many new technologies for the benefit of the whole world.
और उन्होंने पूरे संसार के लाभ के लिए नई-नई तकनीक का आविष्कार किया है.
Amazingly, many Jewish scientists have won the Nobel Prize for their new inventions.
और अद्भुत बात तो ये है कि बहुत से यहूदी साइंटिस्ट जो हैं, उन्होंने जो नए-नए आविष्कार किए हैं, उन आविष्कार के लिए इन यहूदी वैज्ञानिकों को नोबेल पुरस्कार मिला है.
Look what the book of Daniel says. In Daniel chapter 12 verse 4.
दानियल अध्याय 12 वचन 4 में दानियल की किताब क्या कहती है, आइए इसे देखते हैं.
Many shall run to and fro.
बहुत से लोग पूछ पाछ और ढूंढ ढांड करेंगे.
And knowledge shall be increased.
और इससे ज्ञान बढ़ भी जाएगा.
Remember that Daniel lived 500 years before Jesus Christ.
याद रखिए कि यीशु मसीह के जन्म के पहले दानियल जो है वो तो लगभग 500 साल पहले रहता था.
God gave him the prophecy.
और परमेश्वर ने उसे ये भविष्यवाणी दी थी.
And that prophecy is being fulfilled in our days.
और ये जो भविष्यवाणी है वो तो हमारे दिनों में पूरी हो गई है.
These are all foretold by Daniel 2400 years ago.
और ये सारी जो बातें हैं वो तो दानियल ने 2400 साल पहले ही बता दी थी, इसके बारे में उसने भविष्यवाणी की थी.
He says that people would run to and fro here and there for research.
वो कहता है कि बहुत से लोग पूछ पाछ और ढूंढ ढांड करेंगे और इससे ज्ञान बढ़ भी जाएगा, वो तो यहाँ वहाँ भागते रहेंगे.
During his time in Babylon as well as advanced countries.
दानियल के समय में बेबीलोन में, यानी वो तो उस समय का बहुत ही आधुनिक ऐसा देश हुआ करता था.
By that time, people only used to travel by foot.
उन दिनों में लोग तो केवल पैरों से ही या पैदल चलकर ही यात्रा किया करते थे.
Only kings and armies used horses, camels and chariots.
और केवल जो राजा हैं या जो अधिकारी हैं वो घोड़े, ऊंटों और रथों का उपयोग किया करते थे.
Today you know the traffic and the people running.
और आज जो है वो तो आप ट्रैफिक को जानते हैं और लोग कैसे यहाँ वहाँ जा रहे हैं उस बात को जानते हैं.
You know this is very true. It is very different to get even a seat in the aeroplane at the last minute.
आप जानते हैं ये बात तो बिल्कुल सही है कि आज हवाई जहाज में आखिरी समय में टिकट मिलना भी बहुत ही मुश्किल हो जाता है.
In 1930 in India it is very difficult to see cycles on the road.
1930 में भारत देश में सड़कों के ऊपर साइकिल देखना बहुत ही मुश्किल हो जाता था, बहुत कम साइकिल थी.
Today you see the traffic.
और आज के दिनों में आप देखिए कितना ज्यादा ट्रैफिक बढ़ चुका है.
This is the fulfillment of Daniel's prophecy.
और ये तो दानियल की जो भविष्यवाणी थी उस भविष्यवाणी का पूरा होना है.
In connection to the traffic and I can tell you one more prophecy.
और यहाँ पर ट्रैफिक के बारे में मैं आपको एक और भविष्यवाणी बताना चाहती हूँ.
From the Old Testament.
और ये भविष्यवाणी तो पुराने नियम से है.
The minor prophet Nahum lived in North Jerusalem after Daniel.
और देखा जाए तो दानियल के बाद में जो छोटा भविष्यवक्ता था वो तो यरूशलेम में रहा करता था.
In 600 BC.
और ये तो ईसवी सन पूर्व 600 की बात है.
He writes in Nahum chapter 2 verse 4.
और वो नहुम अध्याय 2 वचन 4 में इस तरह से लिखता है.
I would like you to just picture this in your mind.
और मैं यही चाहती हूँ कि बस आप इस बात को अपने मन में एक चित्र के रूप में देखते जाएं.
The chariots shall rage in the streets.
रथ सड़कों में बहुत वेग से हाँके जाते.
They shall jostle one against another in the broad ways.
और चौकों में इधर उधर चलाए जाते हैं. यानी वो सड़कों पर इधर उधर रफ्तार से जाते
हैं। They shall seem like torches.
वे मशालों के समान दिखाई देते हैं।
And they shall run like the lightning.
और उनका वेग बिजली का सा है, इस तरह से वो कहता है।
At the time of Nahum,
और यहाँ पर नहूम के समय में
People were afraid to go out during the night.
जो लोग थे वो तो रात के समय बाहर जाने से डरा करते थे।
Because of the fear of robbers.
वहाँ पर लुटेरे होते थे इसके डर के कारण।
So when God given him the vision of people going to and fro with torches, he would have not imagined the vehicles.
और इसलिए जब परमेश्वर ने उसे दर्शन दिया कि लोग मशाले लिए हुए वहाँ पर यहाँ वहाँ जा रहे हैं, तो नहूम जो है वो तो इन सारी बातों के बारे में कल्पना भी नहीं कर सकता था।
During his time, not even cycles were invented.
और हम कह सकते हैं कि उसके समय में साइकिल का भी आविष्कार नहीं हुआ था।
During what he visualized in his prophecy is true when we see traffic during the night.
और जब हम रात के समय ट्रैफिक को देखते हैं, तो जो कुछ भी उसने कल्पना की थी, जो कुछ भी भविष्यवाणी की थी, उससे हम यहाँ पर अच्छे से समझ सकते हैं कि उसने यहाँ पर इस तरह से भविष्यवाणी की थी।
God wants to tell us through the prophet Nahum his other symptoms in the last days.
और परमेश्वर नहूम भविष्यवक्ता के द्वारा अंतिम दिनों के कौन से लक्षण होंगे, कौन से चिन्ह होंगे, इसके बारे में हमें पहले से बता देता है।
Daniel says in his prophecy that people do more research in every field.
और दानियल अपनी भविष्यवाणी में इस तरह से कहता है कि लोग जो हैं वो तो हर एक क्षेत्र में और भी ज्यादा आविष्कार करते जाएंगे।
As the knowledge is increased.
और जैसे कि ज्ञान बढ़ते जाता है उसके कारण।
Scientist says from Noah's time to AD 1800.
और वैज्ञानिक इस तरह से कहते हैं कि नूह के समय से लेकर ईसवी सन 1800 तक का जो समय था, उस समय के दौरान
Man's knowledge increased on time.
मनुष्य का जो ज्ञान था वो तो बिल्कुल समय के साथ पूरी तरह से बढ़ता चला गया।
From 1800 to 1900 years, it has become double.
और सन 1800 से सन 1900 तक जो समय था, इस समय में ये ज्ञान दुगना हो गया।
From 1900 to 1950 years, it has become four times.
और सन 1900 से लेकर 1950 तक का जो समय था, इस बीच में वो ज्ञान चार गुना बढ़ गया।
Now for every 10 years it is increasing.
और अभी देखा जाए तो ये जो ज्ञान है, ये तो हर 10 साल में रफ्तार से बढ़ती जा रहा है।
If you see the calculation up to AD 1800.
अगर आप ईसवी सन 1800 तक की जितनी भी गिनती है, उन सारी गिनती को अगर आप जोड़ते चले जाएं,
there is not much development taken place in the world.
तो आप पाएंगे कि संसार में ज्यादा कोई उन्नति उस समय नहीं हुई थी।
But after that, every year something is happening.
लेकिन उसके बाद में हम देख सकते हैं कि हर साल कुछ न कुछ बस होते चले जा रहा है, बढ़ते जा रहा है।
Following, we give you a few examples of the increase in knowledge.
और चलिए अब ज्ञान में जो बढ़ती हुई है, उसके बारे में यहाँ पर मैं आपको कुछ उदाहरण देती हूँ।
In the year 1782, steam engine.
1782 में स्टीम इंजन यानी भाप से चलने वाला जो इंजन था, उसका आविष्कार किया गया।
1830 स्टीम रेलवे।
और 1830 में भाप से चलने वाली यानी स्टीम के इंजन से चलने वाली रेलवे का आविष्कार हुआ।
1834 AC एंड रेफ्रिजरेशन।
1834 में यहाँ पर हम देखते हैं कि AC और रेफ्रिजरेशन का आविष्कार किया गया।
1840 फोटोग्राफी।
और 1840 में फोटोग्राफी का आविष्कार किया गया।
1852 रबर टायर।
और 1852 में हम देखते हैं कि वहाँ पर रबर के टायर का आविष्कार किया गया था।
1868 प्लास्टिक।
और 1868 में प्लास्टिक का आविष्कार किया गया, इस बात को आप अच्छे से जानते हैं।
1873 टाइपराइटर।
और 1873 में टाइपराइटर का आविष्कार किया गया था।
I know this will be interesting for you. The telephone was increased in 1876.
और मैं इस बात को जानती हूँ कि ये दिलचस्प है कि 1876 में टेलीफोन का आविष्कार किया गया था।
1885 the motor cars came in.
और 1885 में मोटर कार का आविष्कार किया गया था, इसे बनाया गया था।
1888 film and camera.
और 1888 में फिल्म और कैमरा का आविष्कार किया गया।
1895 सिनेमा।
और 1895 में सिनेमा को बनाया गया।
I'm sure some of you will clap for that.
और मैं जानती हूँ कि आप में से बहुत से लोग इसके लिए ताली बजाएंगे।
1903 एरोप्लेन्स।
और 1903 में हवाई जहाज का आविष्कार किया गया।
1926 टेलीविजन।
और 1926 में टेलीविजन का आविष्कार किया गया।
1936 हेलीकॉप्टर
और 1936 में हेलीकॉप्टर का आविष्कार किया गया।
1946 कंप्यूटर
और 1946 में कंप्यूटर का आविष्कार किया गया।
1957 फर्स्ट अर्थ सैटेलाइट
और फिर 1957 में पृथ्वी पर से पहला सैटेलाइट जो था वो भेजा गया, उस सैटेलाइट का आविष्कार किया गया।
And 1960 द लेजर बीम
और 1960 में लेजर बीम का आविष्कार किया गया।
1961
और 1961 में
द फर्स्ट मैन रीच द मून,
पहला मनुष्य जो है वो तो चांद पर पहुंचा था।
1981
और 1981 में हम देख सकते हैं
स्पेस शटल
बनाया गया था, यानी स्पेस पर जाने के लिए जो शटल होता है वो बनाया गया था।
सो इफ यू सी दिस ओनली आफ्टर एडी 1800 All these developments have taken place.
अगर आप इसे गौर से देखें तो आप ये पाएंगे कि सन 1800 के बाद में ये सारी जो उन्नति है, ये सारी जो बढ़ोतरी है, ये इसी समय में हुई है।
That means, as per the prophecy, the second coming of Jesus is very near.
और इसका मतलब यही है कि इन सारी भविष्यवाणी के अनुसार यीशु मसीह का जो दूसरा आगमन है वो तो बहुत ही निकट आ पहुंचा है।
And it's also interesting to note that most of these inventions were by the Jewish scientists.
और अब ये जानना तो बहुत ही दिलचस्प है कि इनमें से ज्यादा जो आविष्कार है वो तो यहूदी वैज्ञानिकों ने किए हैं।
And many of them got Nobel Prize.
और उनमें से बहुत से लोगों ने नोबेल पुरस्कार पाया है।
Israel is a very small country with 424 kilometers length. 114 kilometers width.
इसराइल तो बहुत ही छोटा सा देश है, 424 किलोमीटर इसकी लंबाई है और 114 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है। ये छोटा सा देश है।
Yes, you will be shocked to listen to this. 22% of Nobel Prize winners from Israel.
और देखा जाए तो आप इस बात को सुनकर चौंक जाएंगे क्योंकि नोबेल पुरस्कार जीतने वाले जितने भी लोग हैं उनमें से 22% लोग तो इसराइल के हैं।
In 1995, only 7 people among 1,000 people had got motor vehicles in India.
1995 में भारत देश में हर हजार लोगों में से केवल 7 लोगों के पास में मोटर व्हीकल हुआ करती थी।
But today, for every 1,000 people, 500 people got motor vehicles like scooter and cars or trucks.
लेकिन आज देखा जाए तो हर हजार में से लगभग 500 लोगों के पास में अपनी कार है या फिर ट्रक है या फिर मोटरसाइकिल है या फिर स्कूटर है।
नेक्स्ट वीक वी विल शो यू मोर प्रोफेसीज एंड द फुलफिलमेंट ऑफ दीस प्रोफेसीज शोज जीसस क्राइस्ट इज कमिंग एंड ही इज एट द डोर।
और अगले हफ्ते हम आपको और भी भविष्यवाणी के बारे में बताएंगे और जैसे कि ये सभी भविष्यवाणी हमें इस बात की ओर दर्शाती है कि यीशु मसीह का आगमन तो अभी बहुत ही निकट है।
As explained in the last episode, Jeremiah compared the fig tree with Israel.
और जैसे कि मैंने पिछले एपिसोड में आपको बताया था कि यिर्मयाह ने अंजीर के पेड़ की तुलना इसराइल के साथ में की है।
So the formation of the new country Israel in 1948 symbolizes the blossoming of the fig tree.
और इसलिए 1948 में इसराइल देश जो नए रूप में बनाया गया ये तो अंजीर के पेड़ के फलवंत होने के बारे में यहाँ पर हमें बताता है।
That means that Jesus Christ is right at the door.
और इसका मतलब यही है कि यीशु मसीह का आगमन बहुत ही निकट है।
Just as we enjoyed giving this message to you about the second coming, the signs, symptoms, and the episodes that are going to follow, we believe that God has His correct time in His mind when He brings this message that we should prepare ourselves. For the second coming of Jesus Christ.
और जैसे कि हमने इन सारे संदेशों को और इन सारी जानकारी को एक साथ जमा करते हुए इसे बताते हुए बहुत ही आनंद को महसूस किया है, हम जानते हैं कि परमेश्वर ही निश्चय ही इस बात को चाहता है कि यीशु मसीह का जो आगमन है उसके लिए हम तैयार हो जाएं और यीशु मसीह का जो आगमन है वो तो बहुत ही निकट आ पहुँचा है।
We thank God for the Bible and for all the information that is right there. And we see that the second coming is very imminent.
और हम बाइबल के लिए परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं और यहाँ पर लिखी हुई सारी जानकारी के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं और हम जानते हैं कि यीशु मसीह का दूसरा आगमन तो बहुत ही करीब है।
So be ready. He may be standing right at your door.
और आप तैयार हो जाइए कि हो सकता है कि प्रभु यीशु मसीह आपके द्वार पर खड़ा है।
May God bless each and every one of you. Till we meet again next week, same time, same place.
अगले हफ्ते इसी समय इसी वक्त शुभ संदेश चैनल पर हमारी मुलाकात होने तक परमेश्वर आपके साथ में रहें और प्रभु आपको आशीष दे।
על יום שמאיר, הללויה, על מה שהיה ומה שעוד לא.